प्यार नहीं है अभिमान की आज्ञा है कि भगवान बता रहे हैं कि ये कार्य करने चाहिए। वह मेरे अर्च विग्रह को तथा मेरे शुद्ध भक्तों को देख कर छू कर पूजा करके सेवा करके स्तुति करके तथा नमस्कार करके अपने को शुद्ध बना सकता है। यहाँ पर अर्च विग्रह सेवा के महत्व को भगवान दर्शा रहे हैं और शुद्ध भक्तों के महत्व को, कि जब भी हम लोग शुद्ध भक्तों को देखें, अर्च विग्रह को देखें, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। फिर आगे बताते हैं, उसे मेरे दिव्य गुणों एवं कर्मों की भी प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा भक्त जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसे भगवान के दिव्य गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। मेरे यश की कथाओं को प्रेम तथा श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। अर्थात जब कथा होती है भगवान की, यश की कथा, भगवान के गुणों की कथा, तो उसको बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुनना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना समय हो गया है, अभी हमें जाना है, घर पे ये कार्य है, व्यापार में ये कार्य है, और अचानक भागवतम में बतलाया गया इतना विशाल एक व्यक्ति आ गया है, उसको किसी की हड्डियों से एक शस्त्र बनाया और मार दिया, ये कहीं सत्य होता है क्या? हमने आज तक ऐसा नहीं सुना। एक व्यक्ति को लेने के लिए 3 यमदूत आए, तो ये सब पर श्रद्धा होनी चाहिए। तथा तो निरंतर मेरा ध्यान करना चाहिए, भगवान का ध्यान होना चाहिए। उसे चाहिए कि जो भी प्राप्त हो वह मुझे अर्पित कर दे। जो भी प्राप्त हो वो भगवान को अर्पित कर दे। जो व्यक्ति कहेगा जो सब भगवान को अर्पित कर देंगे तो हम क्या रखेंगे, हमारे लिए क्या होगा? ठीक है, 100 रुपए कमाते हैं तो 1 रुपया भगवान को दे दिया, वो ठीक है, लेकिन सब कुछ अर्पित, ये सही नहीं। हमें सब कुछ अर्पित करना चाहिए और फिर भगवान से मांग लेना चाहिए। हमने 100 रुपया कमाया है, 100 रुपये भगवान को देना चाहिए, फिर कहना चाहिए भगवान 2 रुपया मुझे दे दीजिए, मैं अपना परिवार चलाना चाहता हूँ, ये भाव होना चाहिए। और अपने को मेरा नित्य दास मानकर मुझ पर ही पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। तो अपने को दास मानना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरे घर में आए हैं तो वो तो मेरे अतिथि हैं या मेरे सेवक हैं, जैसा मैं कहूँगा वैसा वो करेंगे, ये नहीं मानना चाहिए। मानना चाहिए कि ये घर भगवान का है, मालिक भगवान है, और मैं तो केवल सेवक हूँ, और मालिक ने मुझे अनुमति दी है इस घर में रहने की, और मैं लग रहा हूँ। जिस दिन वो मुझे लात मार कर बाहर निकाल देंगे इस घर से और इस शरीर से, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यही हमारी असली स्थिति है, इसको समझना चाहिए। फिर भगवान बताते हैं, उसे मेरे जन्म तथा कार्यों की सदैव चर्चा चलानी चाहिए, और जन्माष्टमी जैसे उत्सवों में जो मेरी लीलाओं की महिमा को बताते हैं, सम्मिलित होकर जीवन का आनंद लूटना चाहिए। देखिए भगवान के नियम बता रहे हैं कि जब उनके जन्म के उत्सव हों तो उसमें सदैव उनकी चर्चा होनी चाहिए और व्यक्ति को भाग लेना चाहिए। उसे मेरे मंदिर में गाकर, नाचकर, बाजे बजाकर तथा अन्य वैष्णवों से मेरी बातें करकर उत्सवों तथा त्योहारों में भाग लेना चाहिए। भगवान बता रहे हैं उत्सवों में क्या होना चाहिए। उसे मेरे मंदिर में गाना चाहिए, क्या गाना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाचना चाहिए, नृत्य करना चाहिए और वाद्य बजाना चाहिए, निबंध करता है, और अन्य वैष्णवों से मेरी बातें करके भाग लेना चाहिए। और चर्चा क्या करनी चाहिए अन्य वैष्णवों से? भगवान की चर्चा। ये नहीं कि कीर्तन हो गया फिर हम नीचे चले गए और फिर वही चर्चा चालू है कि घर में क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है। उसे वार्षिक त्योहारों में होने वाले उत्सवों में, यात्राओं में तथा भेंटे चढ़ाने में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए। देखिए भगवान द्वारा यात्रा में जाना चाहिए सब लोगों को, और वार्षिक त्योहारों में भाग लेना चाहिए। उसे एकादशी जैसे धार्मिक व्रत भी रखने चाहिए, और वेदों, पंचरात्र तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों में उल्लिखित विधियों से दीक्षा लेनी चाहिए। ये भी एक नियम है जो भगवान ने बताया। कई बार ये प्रश्न किया जाता है कि क्या हम लोग बिना गुरु को स्वीकार किए बिना दीक्षा लिए क्या प्रगति नहीं कर सकते हैं भक्ति में? एकलव्य ने किया, हम नहीं कर सकते हैं। भगवान यहां बता रहे हैं नहीं कर सकते हैं, दीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ये नहीं कह रहे हैं आपकी इच्छा हो तो दीक्षा ले लीजिएगा, नहीं इच्छा हो तो भी कोई बात नहीं, कह रहे हैं दीक्षा लेनी चाहिए। उसे श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मेरे पंच विग्रह की स्थापना का अनुमोदन करना चाहिए, इंस्टॉलेशन होना चाहिए मंदिर में। तो सारे भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पर भी जल्दी से जल्दी जो गोकुलानंद जी कई वर्षों से छोटे से हैं वो थोड़े बड़े हो जाएं। सब लोग प्रार्थना कीजिए भगवान से कि जल्दी वो बड़े हो जाएं और हम लोग उनकी सेवा उस रूप में कर सकें। और अकेले अथवा अन्यों के सहयोग से कृष्ण धारणा भावित मंदिरों तथा नगरों के साथ ही साथ फूल तथा फल के बगीचों एवं मेरी लीला मनाए जाने वाले विशेष क्षेत्रों का निर्माण में हाथ बटाना चाहिए। देखिए क्या करना चाहिए, कृष्ण धारणा भावित मंदिर बनाने में सहयोग करना चाहिए। तो आप सब लोग सहयोग करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर विशाल मंदिर भगवान की प्रसन्नता के लिए बन जाएगा। और साथ ही साथ फूल तथा फल के बगीचे लगाने चाहिए। किसके लिए? ताकि घर पर ले जाकर हम लोग सजा सकें या खा सकें, भगवान के लिए। और मेरी लीला लीला मनाए जाने वाले विशेष क्षेत्रों के निर्माण में हाथ बटाना चाहिए। जैसे हम लोग भगवान की लीला स्थली है गोकुल धाम इसको बना रहे हैं, तो आप सबको उसके निर्माण में हाथ बटाना चाहिए कि भगवान कह रहे हैं। उसे अपने को बिना किसी द्वैत के मेरा विनीत दास मानना चाहिए और इस तरह मेरे आवास अर्थात मंदिर को साफ करने में सहयोग देना चाहिए। देखिए भगवान क्या क्या नहीं बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं आपको क्या करना है। मंदिर को साफ करना चाहिए, उसमें हाथ बटाना चाहिए। सर्वप्रथम उसमें झाड़ू देनी चाहिए, झाड़ू करना चाहिए और तब उसे जल तथा गोबर से स्वच्छ बनाना चाहिए। आप लोग केवल जल तक रहिएगा यहाँ पर, अभी गोबर यहाँ पर नहीं, गोबर लगाना है तो फिर गोकुल धाम जा सकते हैं। मंदिर को सूखने के बाद सुगंधित जल का छिड़काव करना चाहिए। देखिए भगवान का आज आविर्भाव दिवस है, भगवान बता रहे कैसे मंदिर सजाना है, तो आप सबको बड़े ध्यान से सुन लीजिए। और फिर उसे मंडलों से सजाना चाहिए, उसे मेरे दास की तरह कार्य करना चाहिए, उसे कभी भी अपने भक्ति कार्यों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साल पहले यहाँ पर कर लें फिर न्यूज में जाकर पर हम जाकर बताएं कि देखिए हमने यहाँ पर ऐसी ऐसी भक्ति की है, मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, झंडोरा नहीं पीटना। इस तरह उसकी सेवा मिथ्या अभिमान का कारण नहीं हो, अर्थात सेवा करने से अभिमान नहीं आएगा। उसे मुझे अर्पित किए गए दीपकों का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए इसमें नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रकाश करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि भगवान को दीप अर्पण किया फिर लाइट चली गई तो उसी लाइट में बैठकर आराम से पढ़ रहे हैं, भगवान मना करते हैं। इसी तरह मुझे ऐसी कोई वस्तु भेंट ना की जाए जो अन्यों पर चढ़ाई जा चुकी है, अर्थात बड़ी शुद्धता से भगवान को जो भी अर्पण करना है वो करना चाहिए। पहले से किसी और को अर्पण की हुई माला भोग भगवान को नहीं देना चाहिए। ऐसे कई भक्त हुए हैं जिन्होंने ऐसा किया है लेकिन हम उस स्तर पर नहीं है। अलवारों में अंडाल का नाम आता है, वो क्या किया करती थी, वो माला खुद पहनती थी, पहले देखती थी अपने आप को शीशे में कि माला ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है, फिर जाकर भगवान को देती थी अर्पण करती थी। तो उनका स्तर हमें ऐसा नहीं करना है। इस संसार में जिसे जो भी वस्तु सबसे अधिक चाहिए और जो भी वस्तु उसे सर्वाधिक प्रिय हो उसे वही वस्तु मुझे अर्पित करनी चाहिए। बड़ा कठिन नियम बता रहे हैं भगवान। दो बातें, पहली चीज जो सबसे ज्यादा आपको चीज प्रिय हो उसे अर्पित कर दीजिए भगवान को, और दूसरा जो आपको सबसे ज्यादा चाहिए। जैसे भारत की दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को क्या चाहिए होता है, धन चाहिए, लाभ प्रतिष्ठा, वो भगवान को अर्पण कर दीजिए। और सबसे प्रिय क्या होता है, अपना परिवार या और कुछ चीजें आपको प्रिय हो सकती, जो भी अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग चीजें प्रिय होती हैं उसे अर्पण कर देना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि कुरान में भी ऐसा वर्णन है कि भगवान ने जो मोहम्मद आए थे प्रॉफिट मोहम्मद उनसे यही कहा था कि आपको जो भी सबसे प्रिय चीज है उसको मुझे अर्पण कर दो, और उनको सबसे प्रिय चीज थी अपना पुत्र। फिर वो भगवान को पुत्र अर्पण करने के लिए जहाँ आज उनका पवित्र स्थान है मक्का मदीना, तो वहां पर वो गए थे। उस समय जंगल था, उन्होंने सोचा कि मैं अपने पुत्र को मार दूंगा, लेकिन मार नहीं सके। दो तरह की कथाएं उस विषय में बताई जाती हैं। कुछ लोग बताते हैं कि वो मारने गए तो उसकी जगह पर बकरा वहां पर बंध गया भगवान की व्यवस्था से, और उन्होंने बकरे को आंखों पर पट्टी बांध कर मार दिया। लेकिन कई लोग ये भी बताते हैं कि दरअसल वो मार नहीं पाए थे, उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया मरने के लिए, अपने हाथों से मार नहीं पाए क्योंकि बड़ा प्रेम था। लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा थी तो वहीं पर छोड़कर, वो जंगल था, जंगल नहीं रेगिस्तान था, वहां पर छोड़ दिया उन्होंने ताकि वो वहीं पर मर जाए। लेकिन फिर भगवान की व्यवस्था हुई कि वहां पर पानी का एक झरना निकला जिसको वो लोग आबे जमजम कहते हैं उसको। आज तो जो स्थान है वहां पर मक्का है, वहां से अपने आप पानी निकला था। रेगिस्तान था, वहां कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनका बच्चा तड़प रहा था पानी के लिए और उनकी पत्नी इधर उधर भाग रही थी। तब फिर उस समय वहां से वो पानी का फुवारा निकला, बाहर की वो वहां पर है बताया जाता है, जिसे लोग आबे जमजम कहते हैं, और उसके भी चारों ओर वो लोग प्रदक्षिणा करते हैं, मंदिर उन्होंने स्थान बनाए हैं। जैसे भगवान ने उनको भी बताया, यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं कि जो भी सबसे प्रिय वस्तु हो उसे अर्पित करें। तो आप बड़े ध्यान से इसको सुन लीजिए, चाहिए तो लिख लीजिए, अपने मन में बिठा लीजिए कि भगवान ने ये बताया है, आपकी सबसे प्रिय वस्तु जो हो उसे अर्पित कीजिए। ऐसी भेंट चढ़ाने से वे नित्य जीवन का पात्र बन जाता है, अर्थात अगर वो ऐसी भेंट भगवान को चढ़ाता है तब वो शाश्वत जीवन के लिए योग्य व्यक्ति बन जाता है। वैसे कार्य हमें भक्ति में करने चाहिए, जैसे भगवान बता रहे हैं। अब उनकी हम लोग आज कथा सुनेंगे क्योंकि आज का दिवस महत्वपूर्ण है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भगवान आए हैं दया की विद्या सिखाने के लिए, और उन्होंने अपने उदाहरण से हम लोगों को सिखलाया। वही राम जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, सब कुछ सारा ऐश्वर्य उनका है, वो जंगल में जमीन पर सो रहे हैं। तो इन चीजों से काफी कुछ हम लोगों को कल सीखने के लिए मिला। प्रमुख शिक्षाएं पर जो हमने सीखी, पहली थी कि किस तरह से हमें भोग में नहीं लगना चाहिए, अपने हृदय में वैराग्य को उत्पन्न करना चाहिए। दूसरी शिक्षा, हमें किसी भी अवस्था में धर्म का पालन करना चाहिए। उदाहरण दिए थे श्री दधीची हरिश्चंद्र बलि महाराज के, किस तरह से उन्होंने अपने अपने धर्मों का पालन किया। तीसरी शिक्षा हम लोगों ने कल दी कि हमें किसी से सेवा ग्रहण नहीं करनी चाहिए जब तक हम उसका कुछ मूल्य चुका ना सके या हम उन्हें कृष्ण दे ना सके, तब तक हमें सेवा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से हमें जो संपत्ति जिसकी है उसी की सेवा में लगाना चाहिए, जैसे भगवान की संपत्ति भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। और फिर हमने देखा कि सीता देवी प्रार्थना कर रही थी, आशीर्वाद मांग रही थी, तो ये भी एक नियम है कि वरिष्ठों से जो भक्ति में आगे बढ़े हैं उनसे हमें आशीर्वाद मांगने चाहिए ताकि हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो ये हम लोगों ने कल चर्चा की थी। साथ साथ हमने कई कथाएं सुनी, गंगा देवी की कथा, मिथिला नगरी की कथा, और भगवान कैसे गंगा को पार करते हैं और क्या क्या हुआ उसकी कथा हम लोग सुन रहे थे। तो जब भगवान यहाँ पर आ गए, आगे चलने लगे, सीता देवी ने प्रार्थना की नदियों से, वृक्षों से। सीता देवी हरेक से प्रार्थना किया करती थी, हरेक से आशीर्वाद मांगती थी कि आज मैं अपने पति और मैं अपने देवर के साथ यहां से जा रही हूं, लेकिन आशीर्वाद दीजिए कि ऐसे ही सकुशल 14 वर्ष बाद वापस भी आऊं। इस तरह के आशीर्वाद को वो मांगने लगी, हर एक से प्रार्थना करती थी। और फिर धीरे धीरे आगे चलकर आए। कल हमने एक कथन कहा था, यहां पर हमने बताया था कि लक्ष्मण जी सोए नहीं थे, लेकिन जब हम रामायण पढ़ रहे थे तो वहां पर एक स्थान पर वर्णन है कि लक्ष्मण जी सोए थे थोड़े समय के, अब वो पता नहीं कितने समय था, लेकिन वहां पर वर्णन है कि भगवान राम लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं, अर्थात ये है कि वो सो रहे थे। लेकिन आचार्य ने वर्णन भी किया है कि लक्ष्मण जी सोए नहीं, तो हो सकता है कि लक्ष्मण जी पहरा देते होंगे और जब भगवान उठ जाते होंगे तब वो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते होंगे, या जो भी व्यवस्था है हम उस पर अपनी कल्पना नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से लक्ष्मण और रामचंद्र जी आगे बढ़े। संध्या का समय हुआ, एक वृक्ष के नीचे वो बैठे। अब भगवान चाहते थे कि लक्ष्मण जी को कष्ट ना हो, तो उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण को वापस भेज देना चाहिए, मेरे साथ ये क्यों कष्ट सहे, इसने तो कोई पाप नहीं किया, इसको तो कोई वचन से बंधन नहीं है, कहते ये वचन तो मेरे लिए मांगा है। तो ऐसे सोचते हुए उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण आज की रात्रि हम लोग यहीं बिताएंगे, तो यहीं विश्राम करते हैं। और फिर दोनों बैठ कर बातें करने लगे। भगवान राम कहने लगे कि मैं सीता के लिए बड़ा चिंतित हूं, सीता यहां पर इस प्रदेश में रहेंगी, मुझे बड़ी चिंता रहेगी, लेकिन साथ ही साथ मैं वहां अयोध्या में अपने पिताजी के लिए भी बड़ा चिंतित हूं। हालांकि वो एक श्रेष्ठ राजा नहीं है, ये बातें जो भगवान राम कहने वाले हैं दरअसल ये उनके हृदय की बातें नहीं है, केवल लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए, लक्ष्मण को थोड़ा सा उत्साह दिलाने के लिए ऐसी बातें भगवान राम कहने वाले हैं। तो राम कहने लगे कि हालांकि वो श्रेष्ठ राजा नहीं है, लेकिन फिर भी राजा है, मुझे उनकी रक्षा की चिंता है, कहकर ही कहीं राज्य के लालच में आकर उनकी हत्या ना कर दे, उनको मार ना दे, वो बेचारे बूढ़े हो गए हैं, मैं भी उनके पास नहीं हूं और कोई भी उनकी रक्षा करने के लिए नहीं है, और कहकर केवल एक है जो इस समय उनकी रक्षा नहीं करेगी और हो सकता है उनकी हत्या कर दे। और फिर तुम्हारी माता सुमित्रा उसके साथ कहकर कैसा व्यवहार करेगी मैं सोच नहीं सकता हूं। कौशल्या देवी जिन्हें बड़ा शोक होगा मेरे यहां आ जाने से, उनके साथ भी कहकर अच्छा व्यवहार नहीं करेगी और हो सकता है उन दोनों को जहर देकर मार डाले, भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण से। तो इसीलिए मैं बड़ा चिंतित हूं, राज्य की व्यवस्था कैसी चलेगी, और भरत भी हो सकता है ठीक से राज्य नहीं करे, तो इसलिए मैं ये तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम अब वापस चले जाओ, क्योंकि हमारी माताओं की जान खतरे में है, हमारे पिता की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, हालांकि वो बड़े आसक्त हैं, ये भी कहते हैं ताकि लक्ष्मण की तरफ से भी बोल रहे हैं कि वो एक स्त्री से आसक्त होकर उन्होंने मेरे जैसे धर्म परायण पुत्र को बाहर निकाल दिया, ये कैसा धर्म है, मुझे ऐसा लगता है कि अब समाज में केवल काम ही राज्य करेगा, अर्थात काम के वशीभूत होकर दशरथ महाराज ने जो ये कार्य किया है तो अब उनके कार्य का अनुमोदन, उनके कार्य का पालन सारी प्रजा करेगी, इसलिए सारे समाज में केवल काम ही राज्य करेगा, ऐसी दुर्व्यवस्था अब आएगी, तो इसलिए मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके तुम अब यहां से वापस चले जाओ और तुम जाकर वहां पर देखभाल करो। तो उस समय जब ऐसा लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री राम ने कहा तो लक्ष्मण बड़े दुखी हो गए और वो कहने लगे कि मैं जानता हूं कि आपके अयोध्या से आ जाने से अयोध्या कांतिहीन हो गई है, अयोध्या की कोई शोभा नहीं रह गई, अयोध्या में हर कोई प्राय मृत हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, मेरी स्थिति उस मछली के समान हो जाएगी जिसको जल के बाहर कर दिया गया है, कितनी सुंदर बात लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर भगवान राम नहीं है, राम का संग नहीं है, तो वो जीवित नहीं रह पाएंगे। उनकी स्थिति उस मछली के समान होगी जो तैरेगी और कुछ समय में अपना प्राण त्याग देगी। आप मछली को बाहर निकालिए पानी से, तो कुछ समय तक मछली प्रयास करती है अपने प्राणों को बनाए रखने का, बहुत तड़पती है। कभी कभी हमने देखा है कि लोग आनंद लेते हैं उसमें, छोटे छोटे बच्चे आनंद लेते हैं। जहां स्थानों पर मछलियां निकाली जाती है, हमने बंबई में कई बार देखा है, लोग मछली पकड़ कर लाते हैं और ऐसे बाहर रखते हैं, तो मछली ऊपर नीचे कूदती है, तड़पती है, प्रयास करती है अपने प्राणों को बनाए रखने का, लेकिन बनाए नहीं रख पाती, कुछ समय में समाप्त हो जाती है। और क्योंकि बच्चे इस चीज को जानते नहीं है, तो देखकर उन्हें आनंद आता है, उन्हें लगता है कोई खिलौना खेल रहा है, कोई खिलौना ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन ऐसी चीजों को देखते देखते जब तक वो बड़े होते हैं, तो उनका हृदय पत्थर हो जाता है, उनके हृदय में दया भावना नहीं रहती। और तब उनके हृदय से ये जो कृपा दया की भावना है वो चली जाती है, और वो भी भौतिकवादी लोगों की तरह ऐसे कार्यों में अपने को नियत करते हैं जो उन्हें नरक की ओर ले जाते हैं। तो लक्ष्मण यहां बतला रहे हैं कि अगर मैं आपसे दूर रहा तो मेरी स्थिति भी उस मछली के समान होगी, मैं अपने प्राण को बनाए नहीं रखता हूं। ये प्रेम होना चाहिए भगवान से। चैतन्य महाप्रभु एक समय जब बड़ी विरह में थे तो चिल्लाने लगे, कहने लगे कि मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है, मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करता, और इसका प्रमाण है कि मेरे प्राण अभी तक बने हुए हैं। अगर सही में मुझे कृष्ण प्रेम होता, अगर मेरे हृदय में थोड़ा भी कृष्ण प्रेम होता, मुझे कृष्ण से विरह होती, तो मैं अपने प्राणों को नहीं बनाए रखता, मैं प्राण त्याग देता। मेरे प्राण है ये इसका प्रमाण है कि मुझे कृष्ण से प्रेम नहीं है। इसी तरह लक्ष्मण जी भी वर्णन करने लगे। तब फिर भगवान राम और समझाने लगे, देखो लक्ष्मण, ये केकई ये बड़ी कुल की कलंकिनी है, ये हमारे परिवार में आई ही इसलिए है कि दशरथ महाराज की हत्या कर सके, मुझे वनवास भेज सके और अपने पुत्र को राजा बना सके, तो इसलिए तुम्हें जाना चाहिए, वो कुछ भी कर सकती है। और मैं चला जाता लेकिन मैं वचन से बंधा हूं, और ऐसे समय में वृद्ध अवस्था में जब माता पिता की सेवा मुझे करनी चाहिए, मैं यहां पर जंगल में आराम से रह रहा हूं। भगवान इस बात को बतला रहे हैं कि हर पुत्र को वृद्ध अवस्था में जब उनके माता पिता हों तो उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता बचपन से ये आशा करते हैं कि जब उनका पुत्र बड़ा होगा और जब वो ऐसी अवस्था में होंगे जब उनका शरीर नहीं चलेगा या उन्हें कार्य करने की शक्ति नहीं रह जाएगी, तो पुत्र उनकी देखभाल करें। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि पुत्र का कर्तव्य है। शास्त्रों में वर्णन है कि अगर कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वृद्ध माता पिता की, तो उसे नरक में जाना पड़ता है और कई वर्षों तक उसे ऐसे नरक में सड़ना पड़ता है, कई हजार वर्षों तक, जहां केवल कष्ट ही कष्ट है, और उसे जबरदस्ती ऐसी चीजों का भक्षण करना पड़ता है जो खाने के योग्य नहीं है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में किया गया है। इसीलिए भगवान यहां बता रहे हैं कि मुझे अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मैं यहां पर हूं इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि तुम चले जाओ। लेकिन लक्ष्मण ने एक नहीं सुनी, और फिर भगवान ने कहा ठीक है, दोनों आराम करने लगे। और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर प्रयाग की ओर जाने लगे। प्रयाग ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, ये ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री राम ने भी स्नान किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी स्नान किया और चैतन्य महाप्रभु ने भी स्नान किया। ये वर्णन आता है कि प्रयाग में सब गए थे, एक साथ नहीं गए थे, अलग अलग समय पर गए थे। तो प्रयाग बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, गंगा देवी, यमुना जी और कौन सी नदी है, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती। जब हम प्रयाग में जाते हैं तो केवल दो नदियों को देख सकते हैं मिलते हुए, गंगा और यमुना।
लेकिन बताया जाता है कि नीचे तीसरी नदी आज इस समय पहले तीनों नदियां दिखाई दिया करती थी लेकिन काल के प्रभाव से अब वो नदी छुप गई है। तो तीनों नदियां वहां मिलती हैं, बड़ा पवित्र स्थान है, इसको तीर्थराज कहा जाता है, सारे तीर्थों का राज है, राजा है। कृष्ण लीला में वर्णन आता है कि एक समय जब नंद महाराज तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे तो भगवान कृष्ण ने तीर्थराज प्रयाग को बुलाया था और जब तीर्थराज आए तो सारे तीर्थ वहां पर आए थे और वहीं पर फिर नंद महाराज ने स्नान किया और सारे तीर्थों का लाभ लिया। तो प्रयाग बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा भी बताया जाता है कि जिस समय अमृत का मटका लेकर जाया जा रहा था तो कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिरी थी अलग अलग स्थानों पर और उनमें से एक स्थान प्रयाग है, इसलिए वहां पर कुंभ मेला किया जाता है हर 12 वर्ष में। और ये 12 वर्ष में क्यों होता है, क्या कारण है कुंभ मेला 12 वर्ष में करते हैं? इसका कारण यह है कि जो युद्ध हुआ था देवताओं का असुर के बीच में वो 12 दिन तक हुआ था और 12 दिन देवताओं के यहां की दृष्टि से 12 वर्ष के समान होते हैं। जब उनके 12 दिन पूरे हुए यहां केवल 12 वर्ष, वो समुद्र मंथन से लेकर वो बूंद गिरने तक 12 दिन लगे थे वहां पर और यहां पर 12 वर्ष लगते हैं। तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा मान्यता है कि हर 12 वर्ष में उसी स्थान पर फिर से वो अमृत प्रकट होता है। तो लोग अमृत लेने के लिए जाते हैं ताकि हम मरे नहीं, अमृत। अगर हम जाकर प्रयाग में कुंभ मेला के समय स्नान कर लेंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। पिछली बार जब नासिक में कुंभ मेला था तो जो लोग कुंभ में स्नान करने के लिए गए थे कि उनकी मृत्यु नहीं हो, वहीं पर कुछ ऐसे घटनाएं हुई थी कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी वहीं पर। इसीलिए मरना ये तो शाश्वत सत्य है, हम सबको मरना है। तो हमें तीर्थों में या भगवान के पास अमृत लेने नहीं जाना चाहिए, कथा अमृत लेना चाहिए। भगवान की कथाओं में जो अमृत है वो ये अमृत से कहीं ज्यादा लाभदायक है। ये अमृत कैसे अमर बनाता है? कई बार ये बताया जाता है कि देवताओं ने अमृत पिया और वो अमर हो गए। अमर हो गए का क्या अर्थ है? क्या वो मरेंगे नहीं? उनकी बहुत लंबी आयु हो जाती, इतनी लंबी कि पृथ्वी की दृष्टि से, पृथ्वी के मापदंड से प्राय अमर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु आती है। लेकिन अगर कथामृतम तब कथामृतम तप्त जीवनम, अगर भगवान की कथाओं का अमृत ग्रहण करते हैं तो फिर मृत्यु नहीं आती है। जैसे कल भी हम बतला रहे थे कि यमराज से चर्चा नहीं करनी पड़ती है, सीधे भगवान के धाम गोलोक वृंदावन जाते हैं जहां शाश्वत जीवन हमें मिलता है। तो इस तरह से प्रयाग की ओर भगवान गए। जब भगवान जा रहे थे तो बीच में कई गांव से होकर गुजर रहे थे, मतलब गांव में तो नहीं जाते थे, गांव के बाहर से जाते थे, तो कई गांव पड़ रहे थे। तो उस समय उन गांव से कुछ नगरियां द्वेष कर रही, जो छोटे छोटे गांव थे जिनको कोई जानता नहीं था, जिनका कोई महत्व नहीं था, लेकिन आज उन गांव से बड़ी बड़ी नगरियां जैसे अमरावती, अलकापुरी, विभावरी, ये देवताओं की नगरियां, तो ऐसी नगरियां इन गांव से द्वेष करने लगी क्योंकि वो देखने लगी और सोचने लगी कि हाय हमारी स्थापना ऐसी जगह पर क्यों नहीं हुई जहां से भगवान राम चलकर जाने वाले थे। हमें तो यहां देवताओं के लोक में बड़े ऐश्वर्य में बिठा दिया है, अमरावती इंद्र की नगरी है तो हमें यहां बिठा दिया है, लेकिन देखो उसका कितना भाग्य, उस गांव का छोटे से इतना भाग्य है कि भगवान राम के चरणों का स्पर्श उसे पूरा, भगवान राम वहां से चल कर जा रहे हैं। तो ऐसे कई गांव से होते हुए भगवान प्रयाग तक पहुंचे और फिर प्रयाग में उन्होंने स्नान किया। प्रयाग का बड़ा सुंदर वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है, उस समय बड़ा सुंदर था, आज तो सारे वन काट काट कर वहां पर रोड्स बना दी गई है, आप गाड़ी लेकर प्रयाग तक जा सकते हैं, लेकिन उस समय में बड़े सुंदर वन थे और फिर उन वनों में बहुत सारे प्राणी स्वच्छंद विचरण किया करते थे, कोई भय नहीं था, और इस तरह इस सुंदर रम्य वातावरण को देखकर भगवान का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और फिर भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि यहीं पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक बहुत बड़े ऋषि का आश्रम है और वो ऋषि हैं भरद्वाज मुनि, तो आओ हम उनके आश्रम में जाएंगे। तो फिर भगवान लक्ष्मण और सीता के सहित भरद्वाज आश्रम में आते हैं। भरद्वाज आश्रम में बड़ा सुंदर आश्रम है, भरद्वाज मुनि बैठे हैं अपने शिष्यों से घिरे हुए, और जैसे ही भगवान उन्हें देखते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। सारी सृष्टि के मालिक, सारी सृष्टि जिनको प्रणाम करती है, वो भगवान दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, पृथ्वी पर लेट कर प्रणाम कर रहे हैं ऋषि मुनियों को, अर्थात अपने आचरण से सिखला रहे हैं कि भक्तों का क्या महत्व है, ऋषि मुनियों का क्या महत्व है। उन्हें हमें जैसे ही देखे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। किस लिए? क्या केवल इसलिए कि उन्होंने अपना कुछ समय वन में बिताया है? क्या केवल इसलिए कि वो शहर से अलग रहते हैं या कुछ पूजा पाठ करते हैं या यज्ञ में लगे हैं? नहीं, हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए, आदर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है। तो यह वही भगवान जिनके चरण कमलों की शरण भरद्वाज मुनि लेते हैं, आज उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और ये देखकर भरद्वाज मुनि भाव विभोर हो जाते हैं और वो भी उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। तो दास अपने मालिक को प्रणाम कर रहे हैं और मालिक दास को प्रणाम कर रहे हैं, ये भक्ति है। कहीं ऐसा देखा है आपने इस भौतिक जगत में कि आप जाएं, जैसे आर्मी होती है, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनको सम्मान देना पड़ता है। आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां सम्मान देना पड़ता है, लेकिन जो छोटे हैं उनको सम्मान नहीं मिलता। अगर कोई बड़ा ऑफिसर आना वाला होता है तो कई सारे सैनिकों को बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है उनके इंतजार में कि वो आने वाले हैं। वो आकर दो मिनट में चले जाते हैं, लेकिन सैनिक बेचारे चार घंटे से सलाम मारने के लिए खड़े रहते हैं। ये बहुत ही जगत का नियम है। हमने कभी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री खड़ा है चार घंटे एक हवलदार के लिए। आपने देखा कभी? हम एक बार बंबई में थे तो हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, अचानक पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। तो हम लोगों ने पूछा क्या हुआ, तो दूसरी तरफ का पूरा सड़क खाली कर दी गई थी क्योंकि तो प्रधानमंत्री आने वाले थे। और फिर वहां पर सारे पुलिस वाले लगे थे, तो हमने एक पुलिस वाले से पूछा, भैया आप कितनी देर से खड़े हैं, क्योंकि उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था। तो उसने बताया कि हमें खड़े हुए चार घंटे हो गए हैं। तो हमने कहा ऐसे आप कैसे खड़े रहते हैं? उन्होंने कहा हमें आदत हो गई है, क्योंकि हम वीआईपी बंदोबस्त में हैं। वीआईपी बंदोबस्त में होने से हर दूसरे दिन हमें ऐसे ही खड़ा होना पड़ता है कहीं कहीं। तो चार घंटे वो खड़े रहे, हम लोगों की भी गाड़ी रोक दी गई थी, तो हमें भी खड़ा रहना पड़ा। तो हमने देखा कि वहां से एक कारवां आ रहा है, गाड़ियों का कारवां, करीब 12-13 गाड़ियां थी। उसके पहले बहुत सारी गाड़ियां जा चुकी थी पुलिस वालों की, उस हॉर्न बजाती हुई, सायरन बजाती हुई, सब रोड साफ करती हुई, देख कर कोई है तो नहीं। और बहुत पास पास खड़े थे पुलिस वाले, जैसे एक यहाँ खड़ा तो दूसरा वहां खड़ा था, ताकि कोई बीच में से आके प्रधानमंत्री को गोली नहीं मार दे। इतना भयभीत रहते हैं आजकल के राज्य। क्या लाभ है ऐसे राज्य करने का? जब अपनी रक्षा वो नहीं कर सकता तो समाज की क्या रक्षा करेगा, प्रजा की क्या रक्षा करेगा? अपनी रक्षा के लिए उसको हजारों सैनिक चाहिए। एक व्यक्ति के लिए करोड़ों रुपया खर्चा होता है दिन का आज के दिन में भारत। और दूसरे स्थान पर गरीब लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है खाने के। ये आज के समाज की व्यवस्था है। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, और कारवां जब आया उसके पहले बहुत गाड़ियां गई थी पुलिस वाले मोटरसाइकिल पे, इस पे, उस पे। और फिर उसके बाद वो 12-13 गाड़ियों का कारवां आया, किसी को पता नहीं था किस गाड़ी में प्रधानमंत्री। इतनी सुरक्षा होती है उनकी कि कभी कभी तो नकली प्रधानमंत्री बनाकर ले जाया जाता है कि व्यक्ति को डर है, भय है, कहीं ला नहीं दे। एक गाड़ी में नकली प्रधानमंत्री रहते हैं, एक गाड़ी में असली प्रधानमंत्री रहते हैं। अरे इससे तो अच्छा है घर से बाहर ही नहीं निकले वो व्यक्ति, मरना तो घर में ही है उसका। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी मृत्यु आई है तो इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद उसकी मृत्यु नहीं होगी, तो मरेगा ही। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे थे उनके ग्रंथ में दो व्यक्तियों का, गांधी जी का और कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका उदाहरण दे रहे थे कि ये दो व्यक्ति की बड़ी सुरक्षा थी। कैनेडी तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनकी तो क्या सुरक्षा होगी आप सोचिए। लेकिन उनको सबके सामने, हजारों लाखों लोगों के सामने गोली से उड़ा दिया गया। गांधी जी को भी सबके सामने गोली से उड़ा दिया गया। तो मृत्यु तो सबको आनी है, कोई सुरक्षा काम नहीं देती है। कितने ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लें, कितनी ही गाड़ियां लगा लें, कितने ही पुलिस वाले लगा लें, जब जाना है तो यमराज को पुलिस वाले नहीं रोक सकते। यमदूतों को कोई गाड़ी नहीं लगती है आने के लिए, यमदूत कोई बंदूक लेकर नहीं आते हैं। जब यमदूत आते हैं तो पता भी नहीं चलता है। सोचिए बड़ी उसने सुरक्षा की व्यवस्था की है, चैन की नींद सो गया है कि अब मेरी पूरी सुरक्षा है, चारों तरफ से मेरी सुरक्षा है। पता चले नींद में ही मृत्यु हो गई उसकी, तब फिर क्या है। कभी कभी जो रक्षक होते हैं वही गोली मार देते हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको उनके ही रक्षक ने, जो उनके बॉडी गार्ड थे, यानी उनके शरीर की रक्षा करना चाहिए था, उन्होंने ही गोली मार दी। तो इस जगत में कोई रक्षा नहीं है, केवल एक ही रक्षा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। सबसे बड़ी सुरक्षा है हमारी। अगर कोई व्यक्ति ये करता है तब भी यमेन न चर्चा, यम उसको दर्शन नहीं देते हैं। तो इस तरह से भगवान प्रयाग में भरद्वाज मुनि के पास आए, दंडवत प्रणाम हुआ। भरद्वाज मुनि ने कहा कि मैं आपका बड़ी देर से इंतजार कर रहा था, मैं प्रतीक्षा में था, और मैंने सुना है कि आपको गलत मार्ग से, गलत कार्य करके राज्य से निकाल दिया गया। देखिए उस समय क्या कम्युनिकेशन सिस्टम कितना बढ़िया था। भगवान राम को कितने दिन हुए थे, अभी 4-5 दिन ही हुए थे केवल राज्य छोड़े हुए, और वहां पर अयोध्या में ये बात घटना हुई थी, और यहाँ चित्रकूट में, चित्रकूट से थोड़ा सा पहले प्रयाग में, प्रयाग में मुनि को खबर मिल गई है और बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम था, अभी भी हो गया, अभी तो मोबाइल वगैरह है, कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, फिर भी सूचनाएं मिल जाती। वैसे पहले के जमाने में जब लोग, जब राजा महाराजा वन में जाया करते थे तो सूचना नहीं दिया करते थे, किसी को पता नहीं होता था कहाँ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम वन में जा रहे हैं अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब छोड़कर जा रहे हैं कि जब कोई तकलीफ हो हमें फोन करो, हम वहां से बताएंगे अच्छा ऐसा ऐसा करो। किस जंगल में गए हैं ये भी नहीं पता होता था जब राजा अपने राज्य छोड़कर वन में चले जाया करते थे, ये नियम था पहले। तो फिर उस भरद्वाज मुनि ने वहां पर भगवान राम का स्वागत किया, उनसे कहा कि आप यहीं पर रहिए, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, मेरे जितने भी शिष्य हैं वो आपकी सेवा करेंगे, और इससे अच्छा स्थान आपको कहाँ मिलेगा, आप यहीं पर रहिए। तो भगवान राम ने उनसे कहा कि स्थान तो बड़ा रम्य है, और मैं आपके स्वागत के, जो आपने मेरा स्वागत सत्कार किया उसके लिए बड़ा आभारी हूँ। और आप कह रहे हैं, भरद्वाज मुनि ने उनसे कहा था, उनके गुणों का गुणगान किया था उस समय पहले ही जैसे मिले थे। भगवान ने कहा कि अगर आप मेरा गुणगान कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति का गुणगान आप करेंगे वो व्यक्ति तो जरूर ही गुण संपन्न होगा। अर्थात अपना गुणगान नहीं कर रहे हैं भगवान, उसमें भी ऋषि का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए शायद मेरे अंदर गुण होंगे, वैसे मेरे अंदर गुण नहीं है। लेकिन ये भाव सिखला रहे हैं भगवान। भगवान के एक एक वाल्मीकि रामायण अगर हम एक एक लाइन पढ़ते हैं तो उसमें एक एक शिक्षा दी गई कि भगवान क्या सिखा रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण है ये 24,000 श्लोकों वाली रामायण। तो भगवान उनसे कहते हैं कि आप कह रहे हैं इसलिए शायद मेरे अंदर गुण होंगे। तो फिर ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि लेकिन मैं यहाँ पर रह नहीं सकता, और इसका कारण क्या है। कहने लगे कि अयोध्या से बहुत पास में है, लोग यहाँ तक आएंगे और नदी पार करेंगे, फिर थोड़ा सा चलकर यहाँ पर आएंगे, तो इस आश्रम में बार बार आकर मुझसे मिलते रहेंगे अयोध्या वासी, और आपको भी तकलीफ होगी, सब यहाँ के वासियों को तकलीफ होगी, और फिर मेरा वनवास पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए मैं कोई ऐसा स्थान चाहता हूँ जहाँ पर पूरी शांति हो, जो एकांत हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो, वन हो, और मैं वहां पर अपना जीवन कंदमूल खाकर बिता सकूं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान ने कहा मैं कंदमूल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। भगवान ने ये नहीं कहा कि ठीक है बहुत अच्छा यहीं रह जाता हूँ, अयोध्या से मेरे लिए रोज वहां से प्रसाद आ जाएगा, भोग आ जाएगा, और अच्छे अच्छे पकवान, और मैं यहाँ रहकर आराम से अपना 14 साल बिताऊंगा, यहीं पर रहकर राज्य भी कर लूंगा रिमोट कंट्रोल के द्वारा। आजकल लोग करते हैं, प्रधानमंत्री कोई और होता है, उसका रिमोट कंट्रोल कहीं और होता है, तो ये नहीं कहा। तो फिर उस समय भगवान ने कहा कि मैं कंद मूल खाऊंगा। और एक बड़ी विशेष बात हमें यहाँ पर स्मरण आती है कि कई लोग ये प्रचार करते हैं कि वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है कि भगवान ने मांसाहार किया। आप लोगों ने सुना ही करो, बड़ा चर्चा का विषय है। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भगवान राम ने मांसाहार किया, और आप लोग कहते हैं मांस मत खाओ, मांस मछली मत खाओ, ये कैसा नियम है? तो आचार्य इसके लिए बड़ी सुंदर टीका देते हैं। पहले आ सकते हैं जिनके केवल नाम से पत्थर कहते हैं, जिनमें इतनी शुद्धता है, उनमें हम कैसे दोष दे सकते? दूसरी बात जो रामायण में हमने देखी, लोग बताते हैं कि ये कैसे प्रमाण देते हैं वो कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है। वो कहते हैं कि जब हनुमान जी सीता देवी के पास गए तो उन्होंने सीता देवी से ये कहा कि हे सीते, आपके विरह में भगवान श्री राम बड़े दुखी। वो लोग बताते जो ये टीका करते हैं, वो लोग बताते हैं कि उसमें लिखा है कि हनुमान जी सीता देवी से कहते हैं कि आपके विरह में उन्होंने मांसाहार करना छोड़ दिया, कंदमूल खाना छोड़ दिया है और बड़े कष्ट में रह रहे हैं, हिरण का मांस खाना छोड़ दिया है और बड़े कष्ट में रह रहे हैं। तो लोग दिखाते हैं, देखो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सीता के हरण के पहले मतलब वो खाते थे, क्योंकि हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि आपके विरह में उन्होंने खाना छोड़ दिया है, मतलब पहले तो खाते थे, साफ साफ लिखा। फिर आप लोग कहते मांसाहार नहीं करो, नियमों का पालन करो, भक्ति करो। अरे हम तो भगवान की ही शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, भगवान का अनुगमन कर रहे हैं। तो जब उसका अनुवाद ठीक से पढ़ा जाए तो उस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, हनुमान जी सीता से कहते हैं कि हे देवी, आपके विरह में रघुकुल नंदन इन्होंने कंदमूल खाना त्याग दिया, कंदमूल खाना छोड़ दिया है, और राघव मांस तो खाते ही नहीं है। और राघव शब्द का अर्थ आचार्य बतलाते हैं कि हर वो व्यक्ति जो रघुकुल में आता है। तो कोई भी रघुकुल का व्यक्ति मांस तो ग्रहण करता ही नहीं, ये हनुमान जी बता रहे हैं। अच्छा, उन्होंने मांस का वर्णन क्यों किया, क्या आवश्यकता थी हनुमान जी को बताने के लिए? क्योंकि जंगल में केवल दो ही चीजें मिलती है खाने के लिए, पहला मांस आप प्राणी को मार कर खाइए, और दूसरा कंदमूल। और जंगल में क्या मिलता है? कंदमूलों में वही मिलता है, और कुछ मिलता है? तो एक बड़े अच्छे तरीके से हनुमान जी समझा रहे थे कि भगवान उपवास कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि केवल दो चीजें मिलती हैं खाने के लिए, मांस तो कोई राघव खाता ही नहीं है, तो मांस खाने का सवाल ही नहीं होता, और जो कंदमूल है वो भी उन्होंने त्याग दिए। ऐसे कथनों से लोगों को भ्रमित किया जाता है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोगों को प्रामाणिक गुरु से ये ज्ञान लेना चाहिए, जिससे हम लोग सीख सकें कि असली तात्पर्य शास्त्रों का क्या है। तो इस तरह से भगवान वहां पर प्रयास से आगे बढ़ते हैं, भरद्वाज जी ने एक स्थान बताते हैं, कहते हैं यहां से कुछ ही दूरी पर बड़ा सुंदर और रम्य स्थान है चित्रकूट। ये चित्रकूट बड़ा प्रसिद्ध स्थान है और उस समय भी बड़ा रम्य स्थान था, बहुत ऋषि मुनि रहा करते थे। भरद्वाज मुनि उनसे कहते हैं वहां पर बहुत सारे लंगूर रहते हैं, बहुत सारे वानर रहते हैं और बहुत सारे हिरण रहते हैं। शास्त्रों में जिस स्थान में हिरण रहते हैं उसको शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है भक्ति के लिए। तो उनका वो बहुत शुद्ध स्थान है और कई बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां वास करते हैं, तो आप भी वहीं पर जाइए। तो फिर उनसे आज्ञा लेकर भगवान राम आगे बढ़ते हैं। वैसे अलग अलग राम का जब चरित्र का वर्णन होता है तो लोग अलग अलग वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि भरद्वाज मुनि ने अपने शिष्यों को बुलाया कि जाओ जरा राम को रास्ता दिखाकर आ जाओ चित्रकूट तक का। तो जैसे ही उन्होंने 5 लोगों को बुलाया, 50 लोग वहां पर आ गए, 50 ब्रह्मचारी भाग कर आ गए जो भरद्वाज मुनि के साथ रह रहे थे। फिर सब जाना चाहते थे, कौन नहीं जाना चाहेगा भगवान राम के साथ उनको रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि भरद्वाज मुनि ने ही उनको केवल रास्ता दिखा दिया, उनको बताया कि आप इस तरफ से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर वहां पर एक छोटा सा पर्वत आएगा, उसको पार कीजिएगा, फिर एक नदी आएगी, ऐसे रास्ता बताया। ये रास्ता बताने की बहुत पुरानी पद्धति है, लोग लैंडमार्क्स के द्वारा जहाँ जो चीजें होती हैं उसके द्वारा बताया करते थे। कभी कभी गाँव में रास्ता पूछते हैं हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, गाँव वाले रास्ता ऐसे ही बताते हैं, और गाँव वालों के लिए थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा, हमारे लिए बहुत ज्यादा। एक बार गांव में रास्ता पूछ रहे थे, कहां पर है, बस यही है, थोड़ा सा चलना है, हम चले जा रहे हैं, आ ही नहीं रहा रास्ता। फिर एक से पूछे, बस यही, क्योंकि वो लोग चलते बहुत है और हम लोगों को शहरों में रहकर चलने की बिल्कुल आदत नहीं है, और वो लोग बहुत चलते हैं, 5-6 किलोमीटर तो उनके लिए यही है। जब उस व्यक्ति ने कहा था यही है तो 3 किलोमीटर आगे था, और हमको चलकर उतना जाना पड़ा क्योंकि हमने सोचा यही है तो चलो चलकर जाए। ऐसे कभी कभी लोग मजाक भी करते हैं कि जब ऐसे स्थान बताए जाते हैं कि घर कहाँ पर है, तो ऐसे ऐसे चिन्हों से बताया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति कहता है आप वहां से सीधे आएंगे, फिर उल्टे हाथ को घूमिएगा, वहां पर एक मस्जिद दिखाई देगी, उससे सीधे हाथ की तरफ जाइएगा, वहां पर एक मंदिर होगा, उससे उल्टे हाथ की तरफ जाइएगा, वहां पर काली भैंसे बैठी होंगी, उनको पार करके आगे गाय भैंस, एक जो सफेद गाय जिस घर के आगे बैठी है वही घर। जब तक पहुंचते पहुंचते अगर गाय चली गई तो घर भी नहीं मिलता। इस तरह से भरद्वाज मुनि ने भी बतलाया कि आप ऐसे ऐसे जाइए, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी तरह बताया था, ये नहीं कहा था कि जिस पर्वत पर बंदर बैठा होगा वही चित्रकूट पर्वत है। तो ऐसे वो बतलाकर उन्होंने भगवान राम को भेजा। भगवान राम लक्ष्मण के साथ सीता के साथ आगे आए, धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंचे, बड़ा सुंदर और रम्य स्थान था। उस पर्वत को देखते ही भगवान ने उसका वर्णन किया और कहा कि यही चित्रकूट पर्वत है। और फिर उन्होंने वहां पर एक आश्रम को देखा, वाल्मीकि मुनि का आश्रम था वहां पर। ये वही मुनि है जो भगवान राम का चरित्र लिखने वाले हैं आगे चलकर। वाल्मीकि मुनि वहां रह रहे थे, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गए, प्रणाम किया, वाल्मीकि मुनि ने उन्हें बड़ा प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए। और फिर वाल्मीकि मुनि से उन्होंने एक प्रश्न किया जिसकी चर्चा हम लोग कुछ समय पहले एक रविवार को कर चुके हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि मैं कहां पर रहूं, मुझे कहां रहना चाहिए। और वाल्मीकि मुनि ने उनसे कहा आप कहां नहीं हैं ये बताइए, ऐसा कोई स्थान है जहां आप नहीं हैं तो आप ऐसे पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं। और फिर वाल्मीकि मुनि उन्हें 14 स्थान देते हैं रहने के लिए, अर्थात केवल अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं ये बतलाने के लिए कि किस तरह से आप ऐसे भक्तों के हृदय में रहते हैं जो आपकी भक्ति करते हैं। वो 14 स्थान कौन कौन से हैं ये हम लोग बड़े विस्तार से चर्चा कर चुके हैं रविवार के दिन, इसलिए फिर से उस पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल संक्षेप में वो बताते हैं कि भगवान उनके हृदय में रहते हैं जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना लिया और जिसमें कृष्ण कथा की नदियां गिरती रहती हैं, कभी भी समुद्र कहता नहीं है कि बस अब दरवाजा बंद, अब समय हो गया, 10 बजने वाला है, अब कथा समाप्त, कथा बंद, हरे कृष्णा, ऐसा नहीं होता है। और आज तो वैसे भी 12 बजे तक कथा चलने वाली है, आप लोग चिंता मत करिए, घड़ी की तरफ मत देखिए, हम देख रहे हैं, आप चिंता मत करिए। तो फिर पहला स्थान उन्होंने ये दिया कि जिनके कान को उन्होंने समुद्र के समान बनाया है, दूसरा स्थान दिया कि जिन भक्तों ने अपनी आंखों को चातक पक्षी बना लिया है, चातक पक्षी सदैव ऊपर देखता रहता है बादलों की ओर, उसकी आंखें कहीं नहीं जाती, कब ऊपर से पानी गिरेगा, जैसे ही पानी गिरता है वो अपना मुख खोल देता है, उसकी विशेषता है कि वो केवल वर्षा का जल ग्रहण करता है, किसी नदी में, किसी सरोवर में, किसी समुद्र में वो पानी ग्रहण नहीं करता। इसी तरह भक्त को होना चाहिए कि केवल कृष्ण भक्ति, यहाँ वहां नहीं, इधर उधर नहीं, थोड़ी सी हम गणेश जी की भी भक्ति कर लें, थोड़ी दुर्गा जी से भी आशीर्वाद ले लें, क्योंकि बड़ा कठिन हो रहा है, फिर मल्ले क्या बोलते हैं बकरा की चिकन क्या करते हैं, कुछ तो करते हैं, उसको भी दे दें, साथ में कृष्ण की भक्ति भी तो कर रहे हैं, उसमें क्या तकलीफ है। तो ऐसा नहीं, भगवान हमें लगता बड़े नाराज हैं, दर्शन ही नहीं दे रहे हैं कभी। शायद आप लोगों की उत्सुकता को बढ़ाना चाहते हैं भगवान। इसको इस प्रसंग को देखकर वृंदावन स्मरण आता है। वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर है और वहां पर दो मिनट भी भगवान के दर्शन नहीं होते। जैसे ही भगवान को देखने के लिए कोई प्रयास करता है तो पुजारी पर्दा डाल देते हैं और फिर दो मिनट में खोते हैं, फिर पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि पुजारियों को भय है कि अगर बड़े प्रेम से किसी भक्त ने देख लिया तो बिहारी जी उनके पीछे पीछे चले जाएंगे और फिर मंदिर खाली हो जाएगा। आज गोकुलानंद जी के पुजारी भी उसी भाव में है, इसलिए हर पांच मिनट में आपको दर्शन देकर पर्दा बंद कर रहे हैं कि कहीं गोकुलानंद जी आज के दिवस पर अगर ऑल्टर छोड़कर चले गए तो शाम को उत्सव है, क्या होगा, अभिषेक किसका करेंगे। तो इसीलिए वो बड़े दुखी है, सॉरी सतर्क है, दुखी नहीं है, बड़े प्रसन्न है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी आंखों को चातक पक्षी बनाया है, जो केवल भगवान को ही देखते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आग रही है। तीसरा स्थान वो देते हैं कि जिन्होंने अपनी जिह्वा को हंसिनी बनाया है और ये हंसिनी एक सरोवर में सदैव वास करती है और सरोवर है भगवान के पवित्र नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात जो जिह्वा, जो व्यक्ति अपनी जिह्वा से सदैव भगवान का नाम लेता रहता है, उसके हृदय में आप रहिए या आप रहते हैं। फिर वो बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी नथनों को, नाक को आपके अर्पण किए हुए फूलों को सूंघने में लगाता है, आपके आपको अर्पण किया हुआ भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, जो भी वस्त्र पहनता है वो पहले आपको अर्पण करता है फिर पहनता है, ये इसलिए करना चाहिए ताकि हम लोग ये जान सके कि सब कुछ भगवान का है। कोई नए वस्त्र लेकर आए तो पहले भगवान को दे देने चाहिए और फिर भगवान से मांगना चाहिए कि कृपया करके मुझे पहनने के लिए कपड़े दे दीजिए, नहीं तो मुझे अवलूल की तरह घूमना पड़ेगा, समाज में थोड़ा उत्पात हो जाएगा, इसलिए दे दीजिए। तो भगवान दे देंगे मुझे कपड़े वापस, आपको देंगे नहीं, रखेंगे नहीं, भगवान के पास बहुत कपड़े हैं। अब सोचिए भगवान के पास कितने कपड़े होंगे, अंदाजा लगा सकते हैं, इतने सारे रूप वो लेते हैं तो हर रूप में कितने कपड़े पहनने पड़ते हैं भगवान। बेचारी यशोदा माता तो थक जाती होंगी उनके कपड़े बनाते बनाते, कभी राम बन जाते हैं, कभी नरसिंह बन जाते हैं, और हर एक रूप में कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, यशोदा माता तो बेचारे बड़ी तकलीफ में होगी। नरसिंह देव का रूप लेते हैं, यशोदा माता सोचती मेरे कपड़ा कैसा पहनाना है, कृष्ण को तो ठीक है वो तो बड़ बड़ है, राम बन जाते हैं, कितने सारे रूप लेते हैं, मत्स्य अवतार लेते हैं, कपड़ा ही नहीं क्या पहना है, वराह देव बन जाते हैं, इस तरह से भगवान कई रूप लेते हैं, इतने सारे उनके कपड़े होंगे। तो इस तरह से जो व्यक्ति अपने कपड़ों को भगवान को ऑफर करके भगवान को पहले देकर पहनते हैं और हमेशा देवी देवताओं की सेवा करते हैं, अर्थात उन्हें आदर देते हैं, साथ ही साथ अपने हाथों से भगवान के मंदिर में सेवा करते हैं और पांव से चलकर मंदिर जाते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप अर्थात अपने पाँव को केवल मंदिर आने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दो पाँव कम पड़ते हैं तो चार पहिए चल जाएंगे, आपके चार पहिए भर, लेकिन वो चारों पहियों को भी केवल मंदिर आने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाकी समय अपने भोग के लिए। जैसे अभी अभी कुछ समय पहले जयप्रदा का महाराज आए थे तो नंद महाराज प्रभु के घर में वो रह रहे थे, तो नंद महाराज प्रभु ने बड़ी नम्रता से उनसे बताया कि महाराज ये मैंने घर सन्यासियों के लिए बनाया है। महाराज ने कहा मैं तो साल में एक ही बार आने वाला हूँ, बाकी समय कौन रहने वाला है इसमें। वैसे महाराज को बतला रहे थे, तो कह रहे मैंने सन्यासी के लिए बनाया है, तो महाराज कहने लगे तो ठीक है लेकिन मैं तो एक ही बार आऊंगा, सन्यासी तो साल में एक बार आते हैं। तो जिन लोगों ने ऐसे कार्य किए अपना घर भर, अपने कपड़े, अपने हाथ, अपने पाँव भगवान की सेवा में लगाए हैं, उन लोगों के हृदय में आप रहिए। फिर ऐसे व्यक्ति जो सदैव आपका नाम लेते हैं, हमेशा आपका नाम लेते हैं और परिवार के साथ बैठकर वो पूजा करते हैं एक साथ बैठकर, ऐसे लोगों के हृदय में आप रहिए। जिनके कोई दुर्गुण नहीं है ऐसे लोगों के हृदय में आप रहिए, अर्थात ऐसे भक्तों के हृदय में रहिए जो दुर्गुण से दूर रहते हैं। ऐसे भक्त के हृदय में रहिए जो सबको प्रिय है, सबको समान देखता है। ऐसे व्यक्ति हम लोग इसके विश्लेषण नहीं कर रहे हैं विस्तार से, इसलिए केवल सुना रहे हैं संक्षेप में। तो ऐसे लोगों के हृदय में आप रहिए। ऐसे व्यक्ति के हृदय में रहिए जो पर स्त्री को मातृवत देखता है, अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी अन्य स्त्रियों को वो माता के समान देखता है और दूसरे के धन को वो मन के समान मानता है। ऐसे व्यक्ति की और पर दुख दुखी अगर वो पर दुख दूसरों के दुख से दुखी होता है और दूसरों के सुख से दुखी होता है, क्या है हमारा स्वभाव बार बार बाहर आ रहा है, जैसा स्वभाव है वैसा ही मुख से निकलेगा। तो हमारा स्वभाव ही नहीं है कि हम पर दुख दुखी हों, इसलिए बार बार पर दुख सुखी निकल रहा है। तो जो व्यक्ति पर दुख दुखी होता है, पर सुख सुखी होता है, दूसरे के सुख में ही आनंद लेता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप रहिए। ऐसे व्यक्ति के हृदय में रहिए जिसने आपको ही अपना स्वामी, अपना माता, अपना पिता, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव, सब कुछ आपको ही मान लिया है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप रहिए। और ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर कोई अवगुणों को उत्पन्न नहीं करता और गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा करता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप रहिए। ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि जितने भी गुण मेरे अंदर हैं वो सब आपकी कृपा है और जितने भी दुर्गुण हैं वो मेरी कृपा है, ऐसा अगर वो मानता है तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप रहिए। ऐसे कई स्थान उन्होंने बताया और अंतिम स्थान उन्होंने बताया था कि ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप रहिए। फिर उसके बाद जब ऐसी सब वार्ता हो गई तो भगवान ने लक्ष्मण को ये आदेश दिया कि अब एक पर्ण कुटीर बनाओ। तो लक्ष्मण गए और उन्होंने जंगल से लकड़ी काटी और लकड़ियों को काट कर एक बहुत सुंदर पर्ण कुटी बनाई जहां पर वो वास करने लगे उस आश्रम में। अब इधर सुमंत्र को तो भगवान ने वापस जाने के लिए कह दिया था और भगवान चले गए थे, लेकिन सुमंत्र कई दिनों तक वापस नहीं गए। ऐसा नहीं था कि उसी समय चले गए, उन्होंने कह दिया ठीक है मैं जा रहा हूं, भगवान ने भी कह दिया, लेकिन सुमंत्र वहीं रह गए निषाद राज के पास। सुमंत्र ये सोच रहे थे कि शायद भगवान वापस आ जाए, और अगर एक दो दिन में वापस आ गए तो उन्हें रथ चाहिए जाने के लिए, तो इसलिए मैं रथ लेकर यहीं खड़ा है। लेकिन इतना सब होने पर भी सुमंत्र को इतना प्रेम था भगवान से कि छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर सुमंत्र वहीं रहे। लेकिन फिर वापस आए, अब सुमंत्र अयोध्या आ रहे हैं। ये जो प्रसंग है बड़ा ही दुखदायी प्रसंग है, बड़ा कष्ट देने वाला प्रसंग है, हृदय को भेद देने वाला प्रसंग है। तो सुमंत्र आ रहे हैं अयोध्या में और जैसे ही वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं वो देखते हैं कि अयोध्या एकदम सूनी है, कोई वहां पर हलचल नहीं है। अयोध्या में सब तरफ ऐसा लग रहा है कि एकदम सन्नाटा है। और वो वर्णन करते हैं, सुमंत्र देखते हैं कि कैसी स्थिति है, कोई बाजार नहीं लगे हैं, कोई अपने घर के बाहर नहीं आ रहे हैं, कोई सामान बेचना नहीं चाहते हैं, कोई सामान खरीदना नहीं चाहते। ऐसे अवस्था में सारे जो लोग हैं वो अपना जीवन बिता रहे हैं, बड़े कष्ट में हैं। इस तरह से सुमंत्र जल्दी जल्दी चल के महल में जाते हैं। इस समय काफी हुआ है। तो इस प्रसंग में दो महत्वपूर्ण बातें हैं, किस प्रकार दशरथ महाराज कथा सुनाते हैं कौशल्या देवी को और उसके बाद कैसे भरत महाराज आते हैं। तो आज तो ये प्रसंग हो नहीं पाएंगे, सारे बहुत काफी बड़े प्रसंग हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठे भक्तों के चेहरे पर भी कहना नहीं चाहिए, कुछ आगे आप लोग समझ गए हैं। तो भक्त भी इशारा दे रहे हैं हमें कि ठीक है, आप अगर ऊपर बैठ गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें वही होगा, कुछ नियमों का पालन कृपया किया कीजिए। क्योंकि 10 बजे हैं, एक 10-15 मिनट और अगर आप लोग बैठ सकते, शक्ति है अंदर तो हम लोग कहें। वैसे तो हमारी इच्छा थी कि हम 12 बजे तक कहें, लेकिन भक्तों के चेहरे, भक्तों का समर्पण करना ही पड़ता है, भक्तों के चेहरे को देखकर भगवान ने हृदय में से हमें ये प्रेरणा दी है कि बहुत हो गया है, भक्त कम हो गए हैं। तो केवल दशरथ महाराज के देह त्यागने तक का प्रसंग आज करेंगे, और फिर जब अगली बार हम कथा होगी तो उससे आगे इस प्रसंग को बढ़ाएंगे। और वो ज्यादा बड़ा नहीं है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य पार रखिए, इस कथा को ध्यान से सुनी लेते फिर आगे बढ़ाएंगे। जय शिशु राध गोकुल आनंद की, जगन्नाथ प्रदेश भद्रमैया की, सुशीला मिताल की। सुशीला गुणगान नहीं किया था इसलिए भगवान चले गए, इसलिए हमने भी गुणगान कर दिया कि अब पर्दा बंद नहीं हो। वैसे आप लोग भी बड़े प्रेम से, तो थोड़े कम प्रेम से देखिएगा, ज्यादा प्रेम आज ना दिखाइए कि भगवान चले नहीं जाए आपके साथ। तो सुमंत्र वापस आए और राजमहल में गए सीधा, उन्होंने देखा दशरथ महाराज बड़ी पूरी अवस्था में ऐसे ही पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, और फिर वहां पर कौशल्या देवी उनके पास बैठी हैं। तो सुमंत्र बताने लगे कि मैं वापस आया हूं। दरअसल जब सुमंत्र आ रहे थे तो रस्ते भर में लोग ने कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे, सुमंत्र को अपना मुंह छुपाना पड़ा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुमंत्र अपना मुंह छुपाकर राजा के महल की तरफ जा रहे थे। ये स्थिति कि लोग ने इतनी बुरी बुरी बातें कह रहे थे कि ये रथ राजा का है और राजा को छोड़कर तुम वापस आ गए हो, तुम बड़े ही स्वार्थी हो। सुमंत्र को कह रहे कि रथ किसका है? राजा का। हमारे राजा कौन है? राम। और उनको तुम छोड़कर आ गए। और भी बहुत बहुत बातें सुमंत्र को कहने लगी कि तुम्हारे हृदय कैसे ये तैयार हो गया इस खाली रथ को यहां लाने के लिए, इस सूर्य रथ को लाने के लिए। बड़ा विलाप करने लगी स्त्रियां देखकर कि हाय अब कैसे रहेंगे, यहाँ तो राम नहीं है, अब कौन हमें हमारा पालन करेगा, कौन उत्सवों में विवाहों में हमारा हमें सहयोग देगा, और किसके लिए हम उत्सव मनाएंगे, जब भगवान ही नहीं है तो उत्सव किसके लिए। तो ऐसे सब कुछ चीजों को सुनते हुए, बहुत और भी अलग अलग बातों को सुनते हुए, अपना मुंह छुपाते हुए सुमंत्र राजा के पास पहुंचे। और फिर राजा को कहने लगे, लेकिन राजा ने जैसे ही देखा कि सुमंत्र वापस आ रहे हैं, राम लक्ष्मण नहीं आए हैं, वो मूर्छित होकर गिर पड़े। बड़ा प्रयास किया जा रहा था उठाने के लिए, वो नहीं पाए। फिर कौशल्या देवी ने उन्हें फटकारा। कौशल्या देवी ने कहा कि उठो और सुनो कि राम और लक्ष्मण का क्या संदेश है। ये वही राम है जिन्हें तुमने देश से निकाल दिया है, वन में भेज दिया है, उनका कम से कम संदेश सुनो। फिर दशरथ महाराज थोड़े होश में आए और फिर सुमंत्र ने रामचंद्र जी के साथ पूरी वार्ता का वर्णन किया और बताया कि भगवान राम ने कहा है कि सारे अयोध्या वासियों को बड़ी अच्छी तरह से रहना चाहिए दशरथ महाराज के राज्य में, और आगे चलकर भरत को भी बड़ा सहयोग देना चाहिए। लेकिन सुमंत्र ने बताया कि जब ये बातें वो कह रहे थे, लक्ष्मण पास में बैठे और लक्ष्मण बड़े क्रोधित हो गए। वो कहने लगे कि मैं इस अपमान को कभी भी सही नहीं कहूंगा, भले ही राम कह रहे हैं कि जो भी मेरे पिता ने किया है वो सही है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि ये अन्याय है, और ये अन्याय श्री राम पर हुआ है। मुझ पर हुआ होता तो मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन राम पर अन्याय हुआ है, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जाकर कह देना उस दशरथ से कि वो एक स्त्री से आसक्त होकर अपने धर्मपरायण पुत्र को जंगल में भेज सकता है, तो ऐसे राजा को राजा कहलाने का अधिकार नहीं है। इस तरह लक्ष्मण ने बड़ा फटकारा और सुमंत्र ने सब जो जो लक्ष्मण ने कहा था वो बतला दिया। सुनते ही दशरथ महाराज मूर्छित हो गए, फिर से गिर पड़े। कौशल्या देवी उन्हें उठाने का प्रयास कर रही थी। तो इस समय बड़ा सुंदर वर्णन आता है, ये 6ठे दिन की रात्रि थी, भगवान को जाकर 6 दिन हुए। सुंदर वर्णन आता है कि किस तरह कौशल्या देवी पहले तो विलाप करती हैं, रोती हैं कि कैसे मैं रहूंगी, और वो सोचते हैं कि कैसे सीता रहेगी, अपने विषय में नहीं ज्यादा सोचते हैं, सीता के विषय में कि कैसे रहेगी सीता, कैसे गर्मी को कैसे सर्दी को सहेगी, और वहां पर प्राणी होंगे, सीता बेचारी किसके चरण बड़े कोमल हैं, किस प्रकार से वन में वास करेगी, इन सब को वो सोच सोच कर चिंतन करने लगी। फिर वे दशरथ महाराज को फटकारती, हालांकि वो उनकी पत्नी है, हमेशा उन्होंने उनका सम्मान किया, उनके विरुद्ध कभी नहीं गई, आज भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें फटकारती है। अशोक देवी कहते हैं कि कैसे राजा हो, आपने अपने ही पुत्र को जंगल में भेज दिया, उस पुत्र को जिसने सदैव बड़ी कोमल शैया पर वास किया था, उस पुत्र को आपने जंगल में भेज दिया, आप कैसे राजा हो, एक स्त्री के वश में आ गए। स्त्री कह रही, कौशल्या देवी कह रही कि एक स्त्री के वश में आकर आपने भगवान राम को वहां पर भेज दिया है, तो वहां कैसे वो रह रहे होंगे, क्या क्या उनके ऊपर बीत रही होगी, इस चीज का वो वर्णन करने लगी। फिर कौशल्या कहने लगी कि हाय, मुझे राम से जरा भी प्रेम नहीं है, देखो मैं अभी भी जीवित हूं, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। कौशल्या देवी कहती है कि एक स्त्री की रक्षा या तो उसका पति करता है, या तो उसका पुत्र करता है, या उसके बंधु बांधव करते हैं, लेकिन हाँ देखो मेरी ऐसी स्थिति है कि मेरा पति ये तो खुद सक्षम नहीं है, ये अपनी रक्षा नहीं कर सकता, एक स्त्री के वश में है तो मेरी क्या रक्षा करेगा, और मेरा पुत्र जो मेरी रक्षा कर सकता था उसको तो इसने जंगल में भेज दिया है, और कोई बंधु बांधव मेरे आस पास है नहीं, अर्थात मैं प्राय वृद्ध हूं, ये मेरा हत्यारा है, कौशल्या देवी कहती है ये मुझे मार रहा है, मार डाला है। वैसे बड़े कठोर शब्द जब कौशल्या देवी ने कहे तो दशरथ महाराज से सहा नहीं गया, दशरथ महाराज बड़े विनीत भाव में अपनी ही पत्नी के सामने हाथ जोड़कर उसे माफी मांगते हैं, और वो कहते हैं कि ये कुल कलंकिनी कैकेयी, मैं इसके वश में आ गया, मैं कैसा मूर्ख था, मैंने विचार विमर्श भी नहीं किया, मंत्रियों को नहीं बुलाया, ऋषि मुनियों को नहीं बुलाया, अन्य बंधु बांधवों को नहीं बुलाया, और ये चर्चा नहीं की कि राम को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, केवल इस कुल कलंकिनी कैकेयी के कहने पर मैंने अपने पुत्र राम को जंगल में भेज दिया है, और इसीलिए मेरे ऊपर ये आपत्ति आई है। कौशल्या देवी कहने लगी कि ये आपत्ति तो कुछ भी नहीं है, क्या तुम सोचते हो कि जब भगवान जब राम वापस आएंगे तो इस राज्य को ग्रहण करेंगे, उस राज्य को जिसको उनके छोटे भाई ने भोग करके त्याग दिया है, राम ऐसा नहीं करेंगे। तो उदाहरण देती है कि जिस तरह से जब श्राद्ध मनाया जाता है तो श्राद्ध में अगर ब्राह्मणों को खिलाने के पहले घर वाले ही स्वयं खा लेते हैं तो ब्राह्मण उस भोजन को छूते नहीं है, ये श्राद्ध का नियम है, पहले ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इसी प्रकार जब जिस राज्य को भरत भोग करेगा उस राज्य को राम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसीलिए तुमने राम को केवल 14 वर्ष के लिए नहीं सदैव के लिए इस राज्य से बाधा कर दिया है। कौशल्या देवी इसका वर्णन करती है, तो उस समय दशरथ कहने लगते हैं कि बहुत दुखी हो जाते हैं और सुमंत्र से कहते हैं कि अभी इसी समय मुझे राम के पास लेकर चलो, अगर मैं इस समय तक राजा हूं तो मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं अभी इसी समय राम के पास जाना चाहता हूं। अभी बड़ा विलाप करने लगे, कौशल्या देवी भी उनसे माफी मांगने लगे, क्योंकि कौशल्या देवी को हाथ जोड़कर कहने लगे कि तुम पत्नी हो और पत्नी का धर्म होता है कि किसी भी अवस्था में उसे पति की सेवा करनी चाहिए, पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और फिर कौशल्या देवी भी बड़ी दुखी होती हैं, और इस तरह से दशरथ महाराज विलाप करते हुए अपनी कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ भी व्यक्ति के साथ होता है वो अपने कर्मों का फल है, कर्म की शुरुआत करते समय हम ये सोचते नहीं है कि इसका फल क्या होगा, अर्थात जब हम कोई कार्य करने जाते हैं हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे इस कार्य का क्या फल हमें मिलेगा, और इस कारण से हमें आगे कष्ट भोगने पड़ते हैं, और मैंने भी ऐसा एक कर्म किया है। वो उदाहरण देते हैं कि मैंने आम के बगीचे को काट कर पालाक्ष के वृक्ष लगाए हैं। पालाक्ष के वृक्ष के जो फूल होते हैं बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन उसका जो फल है बड़ा कड़वा होता है। तो वो उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा बुद्धिमान माने और उसके पास आम के बाग हैं और उस आम के बाग को काट दे और सोचे कि क्योंकि आम के जो फूल है वो सुंदर नहीं होते हैं, तो सोचे कि वो पालाक्ष के वृक्ष लगा दे, ये देखकर केवल कि फूल बड़े सुंदर हैं, तो उसको जो फल मिलेगा वो कड़वा होगा। अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि ऊपरी ऊपरी तौर से जब हम लोग को शुरुआत में कोई कार्य बहुत अच्छा लगता है, हम बिना उसको उसके फल को सोचे जब हम वो कार्य कर देते हैं तो आगे चलकर हमें बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि फल कड़वा होता है। तो इस तरह से वो कहने लगे कि मैंने भी आम के बगीचे को काटकर पालाक्ष के फल लगाए हैं। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। जब मैं बहुत युवा अवस्था में था तो मैं बहुत प्रसिद्ध था अपनी धनुर्विद्या के लिए। मैं बहुत अच्छी तरह से शब्द वेधी बाण चलाया करता था। शब्द वेधी बाण मतलब केवल शब्द को सुनकर उस दिशा में बाण चलाना और जहां से शब्द आ रहा है वहां तक बाण को पहुंचाना। उन्होंने कहा मैं उस समय बड़ा निपुण था शब्द वेधी बाण चलाने में। और एक समय जब वर्षा ऋतु का समय था तो मुझे बड़ा आनंद आया जंगल में जाने का। मैं जंगल में गया और रात्रि के समय मैं एक जलाशय के पास में छुप गया, क्योंकि मैं चाहता था, जानता था कि रात्रि के समय बड़े बड़े जो प्राणी हैं, जानवर हैं, वो पानी पीने आते हैं। ये जंगल का नियम है कि जंगल में जितने भी बड़े बड़े प्राणी हैं, हाथी हैं, शेर हैं, वो रात्रि के समय पानी पीने के लिए जलाशय में आते हैं। वो तो ध्यान में आप लोगों ने बहुत बार इसका अनुभव सुना है वहां के रहने वाले भक्तों से कि रात के समय अचानक हाथी आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले वहां के भक्त ने बता रहे थे कि वो बैठे जपा कर रहे थे और उन्होंने ऐसे घूम कर देखा तो हाथी उनकी ओर आ रहा था, वो भी जंगली हाथी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको हरि नाम नहीं दिया, उसको भक्त बनाने का प्रयास नहीं किया, वो वहां से तुरंत भाग गए। फिर हाथी उनके पीछे पीछे भागा, ऐसे बताया किसी तरह से चला गया। तो ऐसे प्राणी आते हैं, तो मैंने सोचा कि जब प्राणी आएगा पानी पिएगा तो मैं उसको मार दूंगा। तो ऐसे ही कुछ समय बाद मैंने देखा कि पानी पीने की किसी की पानी भरने की आवाज थी और मैंने सोचा कि कोई बड़ा हाथी आया है अपनी सूंड में पानी भर रहा है। और अचानक उस शब्द को सुनकर मैंने बाण चलाया और जैसे ही वो बाण चला मैंने किसी मनुष्य की आवाज सुनी और वो कोई मुनि कुमार थे। वो कहने लगे कि हाय, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो केवल ऐसे व्यक्तियों की हत्या कर रहा है जो यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। मैं तो एक मुनि हूं, तपस्वी हूं, मेरा तो कोई अपराध नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा, फिर ये किसने मेरी हत्या की है? उस हत्यारे को कभी शांति नहीं मिलेगी, ये कौन हत्यारा है? ऐसे बहुत सारी बातों का वर्णन है। समय की कमी के कारण हम उनके श्रापों को यहाँ पर ज्यादा नहीं बदला रहे। तो ऐसा सुनने पर दशरथ महाराज वहां पर गए और जब दशरथ महाराज को उन्होंने देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे राजन, मेरी क्या अपराध था, क्या गलती थी कि आपने मुझ पर बाण चलाया, मेरी हत्या कर दी? मैं तो केवल अपने अंधे बूढ़े माता पिता के लिए यहाँ पर पानी भरने आया था और आपने ऐसे मेरी हत्या कर दी। आपने केवल एक व्यक्ति को नहीं मारा है, एक तीर से आपने तीन व्यक्तियों को मार दिया है, क्योंकि मेरे बिना मेरे अंधे और बूढ़े माता पिता भी रह नहीं पाएंगे, इसलिए आपने आज तीन व्यक्तियों की हत्या की है। फिर उनसे कहने लगा, प्रार्थना करने लगा कि मेरे हृदय में बड़ा दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है मुझे, तो कृपया करके बाण मेरे हृदय से निकाल दीजिए। दशरथ महाराज सोचने लगे कि मुझे बाण निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि अगर बाण निकाल देते हैं तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी और बाण रहने देते हैं तो उसको बड़ा कष्ट होगा। दरअसल ऐसा बताया जाता है, अगर कोई चाकू वाकू पेट में मार दे और मार कर बाहर निकाल दे तो बचने की बड़ी कम उम्मीद रहती है, लेकिन अगर वही है थोड़ा बहुत ऑपरेशन करके उसको बचाया जा सकता है। तो आप लोग भी कभी किसी को चाकू वाकू मारे तो बाहर आकर निकालिए, मारिएगा नहीं चाकू किसी। तो वो सोच रहे थे, लेकिन उस समय वो समझ गए मुनि पुत्र था विश्वाम की इनको दुविधा हो रही है। तो वो कहने लगा कि आप डरो मत, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं एक वैश्य पिता और शूद्र माता का पुत्र हूं, इसलिए आपको ब्राह्मण हत्या का पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मुझे ऐसे ही कष्ट देते रहोगे तो और हो सकता है मेरे कष्टों के द्वारा आपको कोई श्राप मिल जाए। ये सोचकर दशरथ महाराज ने तुरंत वो जो तीर था उसके हृदय से निकाल दिया। तीर निकालने के पहले उसने प्रार्थना की थी कि देखो तुम्हें मेरे पिता बहुत बड़ा श्राप देने वाले हैं, लेकिन तुम बच सकते हो अगर स्वयं जाकर अपने अपराध को स्वीकार करो। ऐसा नियम होता है ना, यहां भारत में भी नियम है कि अगर कोई कोई गुनाह करता है, क्राइम करता है, अगर जाकर सरेंडर कर देता है, स्वीकार कर देता है, तो कभी कभी उसको माफ कर दिया जाता है, सरकार माफ कर देती है, ठीक है तुम्हें फांसी होनी चाहिए थी, 2 साल जेल में रहो और चलेगा, क्योंकि तुमने समर्पण कर दिया। बड़े बड़े डाकू समर्पण करते हैं, आप लोगों ने सुना है ना, चंबल बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, प्रसिद्ध कहना चाहिए कि नहीं, डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, वहां हर दूसरा व्यक्ति डाकू, उसमें भी श्रेणियां होती है, बड़ा डाकू, छोटा डाकू, जिसका बड़ा ग्रुप है वो बड़ा डाकू, वैसे बड़े बड़े डाकू वहां से आए हैं चंबल से। तो जब चंबल में वो लोग रहते हैं तो पुलिस वालों के साथ उनका सामना होता रहता है, रोज एक दो पुलिस वालों को वो मारते हैं, रोज पुलिस वाले एक दो को मार देते हैं, ऐसा चलता रहता है रोज का खेल। लेकिन कभी कभी जब वो देखते हैं कि उनकी स्थिति बड़ी खराब है तो समर्पण कर देते हैं सरकार के सामने, फिर सरकार उन्हें माफ कर देती है। और हमारा भारत ये तो इतना दयालु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, इतना परंपरा है, तो इतने दयालु हैं कि वो डाकू जिन्होंने कई हत्याएं की हैं, लोगों को लूटा है, उनको सरकार माफ ही नहीं करती है, आगे चलकर वो राजनेता बन जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मंत्री बन जाते हैं। देखिए कितने दयालु हैं भारत में लोग, ऐसे दयालु और कहां मिलेंगे, दयालु प्रभु के बल पर थपा है, ऐसे दयालु कहां मिला जाएगा। तो चंबल से वो लोग चंबल से लेकर दूसरे चंबल में चले जाते, दिल्ली में भी एक चंबल है, वहां भी चले जाते हैं। तो इस तरह से वो कहने लगे कि अगर आप जाकर स्वीकार कर लेंगे तब आपको ज्यादा श्राप नहीं मिलेगा। और इतना कहकर फिर जब तीर निकाला तो वहीं पर उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो दशरथ महाराज पानी का जर उन्होंने मटका भरा, क्योंकि पानी भरने आए थे, फिर वहां गए उस रास्ते को जिसको उसने बताया था कि ये पगडंडी से होकर जाना सीधे मेरे आश्रम में जाओगे। तो आश्रम में पहुंचे और दशरथ महाराज की हिम्मत नहीं थी अंदर जाने के लिए, लेकिन पांव की आवाज सुन ली अंदर माता पिता ने, और वो आवाज देने लगे। पिताजी कहने लगे उनके कि बेटा इतना देर क्यों कर दी आने में, कब से मैं और तुम्हारी माँ प्यासे हैं, तो तुम्हें ऐसे पानी में क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। पिताजी सोच रहे हैं कि पानी में खेल रहा था, जैसे कभी कभी होता है भक्त लोग जाते हैं यात्रा पे, नदी दिखते ही फिर और कुछ दिखाई नहीं देता है, जिससे लोग कहते हैं चलो प्रसाद का समय है, कीर्तन करना है, ये करना है, वो सब बात नहीं, अभी नदी दिखाई दे गई पहले सब डुबकी लगाते हैं। तो पिताजी कहने लगे कि तुम्हें क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए थी इस समय में, हम लोग यहाँ पर प्यासे हैं, तुम्हें ला कर देना चाहिए, तुम्हारे अलावा हमारा और कोई सहारा भी नहीं, कौन ला कर देगा हमें पानी, और तुम बोल क्यों नहीं रहे, अंदर क्यों नहीं आ रहे। जब ऐसा बोला तो दशरथ महाराज अंदर गए और उन्होंने कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं यहाँ के जो राजा है उनका पुत्र हूँ, युवराज हूँ, और मैं यहाँ पर आखिर के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा हमारा पुत्र कहाँ, उन्होंने कहा मैं आपको सत्य बताता हूँ, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ, आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने एक शब्द बेदी बाण चलाया जिसके द्वारा आपके पुत्र की मृत्यु हो गई, मैंने सोचा था वो कोई जानवर है जो पानी पी रहा है, तो अनजाने में मैंने आपके पुत्र की हत्या कर दी है और वो मर गया है। तो जैसे ही माता पिता ने सुना कि उनका पुत्र की मृत्यु हो गई है, पुत्र नहीं रहा, तो बड़ा रोने लगे, कहने लगे कि हाय देखो कैसा विधि का विधान है, केवल एक ही सहारा था हमारा, अब वो भी चला गया, अब हम भी अपने प्राण नहीं रख पाएंगे, हम भी चले जाएंगे, लेकिन वो इसको श्राप देने लगे। वो कहने लगे कि क्योंकि तुमने अपना अपराध स्वीकार किया है इसलिए तुम्हें बहुत बड़ा पाप नहीं लगेगा, अगर तुम स्वयं यहां पर चलकर नहीं आते और अपने अपराध को स्वीकार नहीं करते तो अब तक तुम्हारे सर के 10 टुकड़े हो गए होते। अर्थात इस चीज से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए भक्ति मार्ग में तो हमें जाकर स्वीकार कर लेना चाहिए अपने वरिष्ठों के सामने, उसको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि छुपाने से और बड़ा हमें दंड मिलता है, और स्वीकार कर लेने से कभी कभी माफी मिल जाती है। कभी कभी हम लोग कोई अपराध कर बैठते हैं और उसको इसलिए छुपाते हैं कि ताकि हमें उसका दंड भोगने से हमें बच जाए, या हमारा अपमान होगा, हमारी प्रतिष्ठा को धूल लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, अगर कोई व्यक्ति जाकर अपने अपराध को स्वीकार करता है और दंड भी स्वीकार करता है, दशरथ महाराज ने यह भी कहा था कि मैंने हत्या कर दी है और मैं अब तैयार हूं, आप जो दंड मुझे देना चाहें दे दीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा कि आपको ये दंड तो नहीं मिल सकता और ना ही ब्राह्मण हत्या का आपको पाप लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस तरह से मैं पुत्र के वियोग में तड़प रहा हूं, आप भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पेंगे, आप भी कष्ट भोगेंगे पुत्र के वियोग में, और तब आपको पता चलेगा कि मेरी आज क्या अवस्था है। और इतना कहकर उन्होंने कहा कि हमें तुरंत अभी वहीं उस स्थान पर लेकर चलो जहां पर हमारे पुत्र का देह है। वे दशरथ महाराज उनको वहां लेकर आते हैं और वो अपने हाथों से, क्योंकि अंधे हैं, अपने हाथों से उस देह को छूते हैं और बड़ा विलाप करते हैं कि आज क्यों नहीं उठ रहा है, आज क्यों नहीं बातें कर रहा है। और फिर वो अपने पुत्र से कहते हैं कि तुम्हारी जो मृत्यु हुई है ये एक राजा के समान है, तुमको वही गति मिलेगी जो एक राजा को युद्ध करते हुए मिलती है। और जब ऐसा कह रहे थे तो दशरथ महाराज ने देखा कि एक विमान आया देवलोकों से, इंद्र का विमान था, और फिर उसमें एक बड़ा ही सुंदर युवक बैठकर वहां पर दिव्य लोकों में, देवलोकों में चला गया। और फिर तुरंत वहीं पर उनके माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तो दशरथ महाराज उस घटना का स्मरण कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आज ये जो मेरी दशा है मेरे कर्मों का फल है। और उस चीज को कहते कहते सोचने लगे कि मैं आज के बाद कभी राम के दर्शन नहीं करूंगा। फिर वो कौशल्या की ओर देखकर कहने लगे कि कौशल्या मुझे अब तुम दिखाई नहीं दे रही हो ठीक से, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है और अब मैं जानता हूं कि मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, अब मैं कभी भी श्री राम के दर्शन नहीं करूंगा और कभी उनसे माफी नहीं मांग पाऊंगा। मेरी इच्छा है कि मैं राम लक्ष्मण और सीता से माफी मांगूं, मैं उनके दर्शन करूं। कितने भाग्यवान हैं वो लोग जो 14 वर्ष बाद राम जब आएंगे तब उनका दर्शन करेंगे। बड़े भाग्यवान होते हैं वो लोग जो भगवान की कथा सुन सकते हैं, जो भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दशरथ महाराज कह रहे हैं कि बड़े भाग्यवान होंगे वो अयोध्या वासी जो अपने प्राणों को बनाए रखेंगे 14 वर्षों तक जब भगवान श्री राम वापस आएंगे। और ऐसा कहते कहते हा राम हा सीता हा लक्ष्मण चिल्लाते चिल्लाते दशरथ महाराज अपने प्राणों को त्याग देते और वहीं पर गिर जाते हैं। और फिर कौशल्या बड़ी दुखी हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन रात्रि का समय होता है कोई वहां होता नहीं है। रोते रोते सुमित्रा आती हैं, सुमित्रा और कौशल्या दोनों बड़ा क्रंदन करती हैं, लेकिन सुबह तक किसी को पता नहीं चलता क्योंकि कौशल्या को इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो जाकर किसी को बुला सके। और सुबह बंदीजन उनको कहते हैं जो सुबह सुबह राजा को उठाने के लिए आते हैं, सुंदर सुंदर श्लोकों का उच्चारण करते हैं, अच्छे भजन सुनाते हैं ताकि राजा की सुबह अच्छी हो। वो सब आ गए और वो उठाने लगे और स्त्रियां आ गई, अन्य रानियां आ गई, दशरथ महाराज के महल में और भी स्त्रियां थी। तो उन्होंने जब दशरथ महाराज के शरीर का स्पर्श किया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि दशरथ महाराज के शरीर की जो गर्मी थी वो जाती है, पूरा ठंडा हो गया शरीर। और फिर उन्हें पता चला और उन्होंने देखा कि वहीं पर कौशल्या और सुमित्रा वो गिरी पड़ी हुई, फिर उनको भी उठाया गया और फिर सारे अयोध्या में ये क्रंदन होने लगा, सब रोने लगे, सबको पता चला कि महाराज चले गए हैं। फिर उनके शरीर को एक बड़ी सी कढ़ाई में जिसमें तेल भरा था उसमें रखा गया ताकि उनका अंतिम संस्कार अब कौन करेगा इसका निश्चय हो और राजा कौन बनेगा। सारे ऋषि मुनियों ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि राजा के बिना तो राज्य एक दिन भी नहीं चलना चाहिए, अब आप उनके पुत्र नहीं है तो किसी योग्य व्यक्ति को राजा बनाइए। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि दशरथ महाराज ने राजा भरत को बनाया है तो तुरंत भरत को बुलाओ, अभी दूत जाएंगे, भरत को यह बताना नहीं कि जिनके पिता की मृत्यु हुई है या राम वनवास में गए हैं, केवल उन्हें यह संदेश देना कि बहुत जरूरी कार्य है, तुरंत अभी इसी समय कुल गुरु ने आपको बुलाया है, और बहुत सारे उपहार लेकर जाना। भागवत में रामायण में वर्णन है कि उस समय के उपहार करीब 20 करोड़ रुपए के उपहार लेकर गए, बहुत सारे उपहार लेकर जाना, वहां कहते राज को देना और ये कहना कि सब कुछ सकुशल है और आपको तुरंत बुलाया है। ऐसा कहकर दूतों को तुरंत भेजा गया और दूत भरत महाराज को बुलाने के लिए चले गए। आगे की कथा बड़ी बहुत ही अच्छी है, रामायण कथा ही पूरी अच्छी है कि कैसे भरत महाराज को एक बहुत बुरा स्वप्न आया, भरत महाराज जब वापस आए तो उन्होंने क्या देखा, और भरत और कैकेयी संवाद ये सबसे अच्छा भाग है उस प्रसंग का, कि किस तरह से भरत अपनी माँ को डांटते हैं, फटकारते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, और बाद में फिर वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। ये बड़े सुंदर प्रसंग रामायण के हैं। आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। दशरथ महाराज की मृत्यु हो चुकी है और भरत के लिए संदेश गए हैं, तो अगली बार से आगे से कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इतने समय तक यहाँ पर बैठे, हमें आशा नहीं थी कि आप लोग बैठेंगे, आप लोगों ने यहाँ समय लिया। शाम के समय कृपया सही समय पर आइएगा, 6 बजे से उत्सव शुरू होगा, अभिषेक होगा, भगवान का भजन कीर्तन और प्रवचन प्रसाद होगा, कृपया इस सब में आप लोग भाग लीजिए। हरे कृष्ण।